एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हमें एक बहुत जाने पहचाने कवि से, मतलब बिल्कुल नए ढंग से मिलवाती है।
अच्छा, कौन सी किताब है ये?
ये है जे परिणी की रॉबर्ट फ्रॉस्ट 16 पोएम्स टू लर्न बाय हार्ट।
ओह, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और जे परिणी, हाँ, जाने माने लेखक हैं, प्रोफेसर भी है मिडलबरी कॉलेज में। फ्रॉस्ट पर उनका काम तो काफी माना जाता है।
हाँ बिल्कुल, और ये किताब ये सिर्फ फ्रॉस्ट की 16 कविताओं का कोई विश्लेषण नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है।
मतलब
ये एक तरह का न्योता है कि हम कविता को कंठस्थ करें, उसे अपनी रूह का हिस्सा बनाएं, वो कला जो अब लगभग खो सी गई है ना,
हाँ
उसे फिर से खोजें।
हाँ ये बात तो है, कविता याद करना आजकल कहाँ होता है।
तो आज हम परिणी के नजरिए से फ्रॉस्ट की जो परतें हैं उन्हें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कविता को दिल से याद करना आज भी क्यों जरूरी है, क्यों मायने रखता है।
ये तो वाकई दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि ये किताब, जैसा आपने कहा, कोई टिपिकल जीवनी या एकेडमिक आलोचना जैसी नहीं है।
है ना,
नहीं, बिल्कुल नहीं।
कैसा लगता है जैसे परिणी जो खुद भी कवि हैं वो हमें फ्रॉस्ट के पास ले जा रहे हैं और कह रहे हो देखो सुनो महसूस करो।
हाँ बिल्कुल, एक गाइड की तरह।
और ये किताब ऐसे वक्त में आई है जब हम सब, मतलब हर चीज स्क्रीन पर पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जानकारी चाहिए सबको।
हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला दौर है।
बिल्कुल, तो कविता को धीरे धीरे पढ़ना, उसे याद करना, ये तो जैसे पुरानी बात हो गई। और परिणी इसी सोच को, इसी धारणा को चुनौती दे रहे हैं। वो कहते हैं कि फ्रॉस्ट, जिन्हें हम अक्सर सोचते हैं कि वो न्यू इंग्लैंड के कोई शांत सौम्य से कवि थे,
हाँ, वो देहाती छवि, वही वो असल में कहीं ज्यादा गहरे थे, जटिल थे, और कभी कभी तो वो आतंक के कवि यानी पोएट ऑफ टेरर भी थे।
पोएट ऑफ टेरर, ये काफी मजबूत शब्द है।
हाँ, मतलब वो जो जीवन के अंधेरे हैं ना, निराशा है, अवसाद है, उससे जूझ रहे थे।
अच्छा, तो यहीं पर परिणी का जो मुख्य तर्क है वो सामने आता है।
क्या है वो?
उनका मानना है कि कविता की जो असली ताकत है ना, उसका पूरा जादू वो तभी खुलता है जब वो हमारी याद में बस जाए।
बिना किताब के पन्ने के।
हाँ, जब वो हमारे अंदर गूंजने लगे। और ये आज की जो तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया है उसके लिए तो एक बुरी चुनौती है ना।
बिल्कुल है, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, गहराई से सोचने का, रुकने का वक्त ही नहीं है जैसे।
सही कहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम किसी कवि की रचना से, उसके असली मर्म से सार्थक रूप से कैसे जुड़ सकते हैं।
और परिणी का जवाब इस पर, वो बहुत सीधा है और बहुत शक्तिशाली भी।
क्या कहते हैं वो?
कविताओं को कंठस्थ करके, उन्हें याद करके।
याद करके,
हाँ, उन्हें अपने अंदरूनी दुनिया का, अपनी चेतना का हिस्सा बनाकर। जब हम ऐसा करते हैं तो कविता सिर्फ शब्द नहीं रहती, वो एक अनुभव बन जाती है।
एक अनुभव।
तो इस पूरी चर्चा के केंद्र में फ्रॉस्ट की कविताएं हैं, परिणी का विश्लेषण है, पर हम जैसे तीन किरदारों को महसूस कर सकते हैं इसमें।
तीन किरदार कौन कौन?
पहले तो जाहिर है, खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट। परिणी उन्हें सिर्फ एक साहित्यिक हस्ती की तरह नहीं देखते।
हाँ, वो उन्हें एक जीते जागते जटिल इंसान के रूप में दिखाते हैं।
बिल्कुल, महत्वाकांक्षी थे पर गहरे आत्मसंदेह से भी भरे थे। अवसाद था, जिसे वो खुद हिज ग्लूम कहते थे,
उनका अपना निजी अंधेरा या उदासी।
हाँ, और उनका जीवन भी आसान नहीं था, बहुत त्रासदियां झेली उन्होंने।
हाँ, मैंने पढ़ा है, पिता की जल्दी मृत्यु हो गई,
6 में से 4 बच्चे खो दिए उन्होंने, पत्नी का निधन हुआ, बहन की मानसिक स्थिति बिगड़ गई।
बाप रे, बहुत मुश्किल रहा होगा।
बहुत, और इन सब तूफानों के बीच परिणी दिखाते हैं कि कविता फ्रॉस्ट के लिए क्या थी। वो कहते हैं, भ्रम के खिलाफ एक क्षणिक ठहराव,
अ मोमेंट्री स्टे अगेंस्ट कन्फ्यूजन।
मतलब दुनिया की जो उलझने हैं, परेशानियां हैं, उनके बीच जैसे एक सुकून का पल, स्पष्टता का पल।
बिल्कुल,
और हम देखते हैं कि कैसे वो धीरे धीरे बदले, प्रकृति के एक साधारण ऑब्जर्वर से।
हाँ,
इंसानी चुनाव, मौत और अस्तित्व के जो गहले सवाल हैं, उन पर सोचने वाले एक दार्शनिक कवि बन गए।
ये तो हुई फ्रॉस्ट की बात। दूसरा किरदार कौन है?
दूसरे हैं खुद जे परिणी। वो हमारे गाइड हैं, एक ऐसे दोस्त जैसे जो फ्रॉस्ट को बहुत करीब से जानता है
और हमें उनसे मिलवाना चाहता है।
हाँ, उनकी आवाज में ज्ञान है, पर वो बोझिल नहीं है, उसमें एक जुनून है, एक गहरी सहानुभूति है। उनका मकसद साफ लगता है, फ्रॉस्ट की जो कला है, उसके लिए जो उनका गहरा प्यार है, उसे बांटना। और फ्रॉस्ट की वो सच्ची तस्वीर सामने लाना जो अक्सर मतलब सतही समझ के नीचे छिप जाती है।
वो पाठक और कवि के बीच एक पुल जैसा बनाते हैं।
सही कहा, एक पुल।
और तीसरा किरदार?
तीसरा और शायद सबसे जरूरी किरदार वो है पाठक,
पढ़ने वाला।
हाँ,
है हम लोग।
हाँ, इस किताब में पाठक सिर्फ सुनने या पढ़ने वाला नहीं है, पर इन्हीं हमें उकसाते हैं कि हम सक्रिय बने, भागीदार बने।
अच्छा,
कैसे?
ये एक यात्रा है, किसी कविता से पहली बार मिलना, उसे समझना और फिर उसे कंठस्थ करके, याद करके अपने अंदर बसा लेना। परिणी हमें इस सफर पर साथ ले चलते हैं।
ये सुनने में ही अच्छा लग रहा है।
बिल्कुल, और ये यात्रा हमें फ्रॉस्ट की 16 चुनी हुई कविताओं के जरिए आगे ले जाती है। हर कविता जैसे एक नया दरवाजा खोलती है, फ्रॉस्ट के मन का, उनके अनुभवों का, उनकी कला की बारीकियों का।
तो चलें फिर कुछ कविताओं की बात करें, परिणी उन्हें कैसे देखते हैं।
हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं उस कविता से जिसे शायद सबसे ज्यादा लोग जानते हैं और शायद सबसे ज्यादा गलत समझते हैं।
आप द रोड नॉट टेकन की बात कर रहे हैं।
हाँ, द रोड नॉट टेकन। हाँ, ये कविता तो जैसे व्यक्तिवाद का, अपनी अलग राह चुनने का सिंबल बन गई है।
है ना? लेकिन परी ने इसी आम धारणा पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं जरा ध्यान से पढ़ो।
अच्छा,
क्या है उसमें?
परिणी हमें याद दिलाते हैं कि कविता का जो वक्ता है वो खुद कहता है कि दोनों सड़कें वास्तव में लगभग समान थीं।
Really about the same.
मतलब उनमें कोई खास फर्क नहीं था।
हाँ, और भविष्य में जब वो कहेगा मैंने कम चली हुई राह चुनी और उसी से सारा फर्क पड़ा है।
आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस।
हाँ, ये लाइनें तो बहुत मशहूर हैं।
मशहूर है, पर परिणी कहते हैं कि जब वो ये कहेगा तो एक आह
के साथ कहेगा।
आ मतलब
ये आ राहत की भी हो सकती है, अफसोस की भी। परिणी का मानना है कि ये कविता शायद इस बारे में है कि हम कैसे अपने अतीत के जो फैसले होते हैं, जो शायद यूं ही ले लिए गए हों, उनको मायने देने के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं।
अपनी जिंदगी को एक मतलब देने के लिए।
हाँ बिल्कुल, और परिणी कहते हैं कि जब आप कविता को याद करते हैं ना, तब आप इस विडंबना को, इस आहा के पीछे जो मतलब छुपा है, उसे ज्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं।
ये तो काफी अलग नजरिया है उस कविता को देखने का, बहुत दिलचस्प
है ना। परिण यही करते हैं, वो हमें परिचित पंक्तियों के पीछे ले जाते हैं। अच्छा, अगली कविता देखें, मेंडिंग वॉल।
हाँ, मेंडिंग वॉल, दीवार बनाने वाली कविता।
हाँ, दो पड़ोसी हैं, हर साल वसंत में अपने खेतों के बीच गिरी हुई पत्थर की दीवार को फिर से बनाते हैं। एक पड़ोसी जो शायद थोड़ा नए ख्यालों का है, वो सवाल पूछता है, समथिंग देर इज दैट डजंट लव अ वॉल, मतलब कुछ तो है जिसे दीवारें पसंद नहीं,
जो उन्हें गिरा देता है, शायद प्रकृति या कुछ और।
हाँ, लेकिन दूसरा पड़ोसी है, वो अपने बाप दादाओं से सुनी बात दोहराता है, गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स,
अच्छी दीवारें ही अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। ये भी काफी मशहूर कहावत बन गई है।
बन गई है। तो परिणी इस साधारण से दिखने वाले गांव के सीन को लेते हैं और उसे इंसानी रिश्तों के एक बहुत पुराने शाश्वत सवाल में बदल देते हैं।
कि हमें अलगाव चाहिए या जुड़ाव, सीमाएं जरूरी हैं या वो तोड़ने वाली बाधाएं हैं।
बिल्कुल, ये सिर्फ खेतों की दीवार की बात नहीं है, ये हमारे मन में बनी सामाजिक मनोवैज्ञानिक दीवारों की भी बात है।
और फ्रॉस्ट कोई सीधा जवाब नहीं देते इसमें, है ना?
नहीं देते, वो दोनों विरोधी विचारों को जैसे तराजू के दो पलड़ों पर रखकर छोड़ देते हैं सोचने के लिए। वो पंक्ति समथिंग देर इज दैट डजंट लव अ वॉल, ये बहुत मायने रखती है।
ये शायद प्रकृति की उस ताकत की ओर इशारा है या इंसान की आत्मा की उस आवाज की ओर जो बंटवारे का, अलगाव का विरोध करती है।
हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। फिर एक और मशहूर कविता है बर्चेस, भोजपत्र के पेड़।
हाँ, बर्चेस, इसमें वो झुके हुए पेड़ों को देखकर कल्पना करते हैं।
हाँ, बर्फ के तूफान ने पेड़ों को झुका दिया है, लेकिन कवि कल्पना करना चाहता है कि कोई लड़का उनपे झूल झूल कर उन्हें झुका गया है। वो उस लड़के की तरह उन पेड़ों पर झूल कर धरती से दूर जाना चाहता है, एक तरह का पलायन।
और परिणी इसे फ्रॉस्ट के जीवन दर्शन से जोड़ते हैं।
हाँ, वो मानते हैं कि ये फ्रॉस्ट का एक तरीका है कल्पना और यथार्थ के बीच संतुलन साधने का।
अच्छा,
पेड़ों पर झूलना, कल्पना में खो जाना, ये जीवन की जो कठोर सच्चाइयां हैं उनसे एक पल का पलायन है, जैसे स्वर्ग की ओर जाना, लेकिन
लेकिन वापस तो आना ही पड़ता है।
हाँ, अंत में हमें धरती पर वापस आना ही होता है, यथार्थ को मानना ही होता है। और यहीं पर परिणी फ्रॉस्ट की उन कमाल की पंक्तियों को रेखांकित करते हैं।
कौन सी?
अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, I don't know where it's likely to go better.
मतलब प्यार करने के लिए, जीने के लिए धरती ही सबसे सही जगह है. इससे बेहतर और कहाँ हो सकता है?
बिल्कुल. दुनिया में इतनी मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, फिर भी फ्रॉस्ट का विश्वास इसी दुनिया में, इसी जीवन में बना रहता है. परिनी कहते हैं ये पंक्तियाँ फ्रॉस्ट के यथार्थवाद और जीवन के प्रति उनकी गहरी आस्था को दिखाती हैं.
ये बहुत सुंदर है. और फिर वो कविता जो मुझे हमेशा थोड़ी रहस्यमयी लगती है, Stopping by woods on a snowy evening.
हाँ, बर्फीली शाम में जंगल के किनारे रुकना.
ऊपर से देखो तो कितनी शांत, कितनी सुंदर लगती है.
है, लेकिन परिनी इशारा करते हैं कि वो जो प्यारे, काले और गहरे जंगल है ना,
हाँ,
वो सिर्फ सुंदर नजारा नहीं है, वो आराम का, सब कुछ भूल जाने का और शायद मौत के निमंत्रण का भी प्रतीक है.
ओह, मौत का निमंत्रण.
हाँ, एक तरह का आकर्षण. कवि उस शांतिपूर्ण अंधेरे की ओर खिंचा महसूस करता है.
हाँ, ऐसा लगता है एक तल को कि वो वहीं रुक जाएगा, उस खामोशी में खो जाएगा.
बिल्कुल. लेकिन फिर जैसा परिनी बताते हैं, जिम्मेदारियों का एहसास उसे वापस खींच लाता है. वादे निभाने हैं, प्रोमिसेस टू कीप.
उसे याद आता है कि अभी जीवन का सफर बाकी है.
हाँ, और कविता की वो आखिरी पंक्तियां जिन्हें वो दोहराता है,
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप.
यानी सोने से पहले अभी मीलों चलना है, सोने से पहले भी मीलों चलना है. परिनी कहते हैं कि ये पंक्तियां सिर्फ रास्ते की मीलों की बात नहीं है, ये जीवन के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और इंसान की सहन शक्ति का एक शक्तिशाली मंत्र बन जाती हैं.
और इसे कंठस्थ करने से क्या फर्क पड़ता है?
परिनी का कहना है कि जब आप इसे याद करते हैं तो आप उस खिंचाव को महसूस करते हैं, उस अंधेरे आकर्षण और जिम्मेदारी के बीच जो तनाव है, वो जैसे आपकी रगों में उतर आता है.
ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है.
परिनी हमें फ्रॉस्ट के उस पक्ष से भी मिलवाते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.
कौन सा पक्ष?
उनका अंधेरा पक्ष, उनका अवसाद. ये अक्वेंटेड विद द नाइट जैसी कविताओं में खुलकर सामने आता है.
रात से परिचित, हाँ, ये शीर्षक ही काफी कुछ कहता है.
बिल्कुल, ये फ्रॉस्ट के अकेलेपन का, उनके दुख का एक बहुत ही मार्मिक और निजी चित्र है. कवि रात के सन्नाटे में शहर की सड़कों पर भटक रहा है, बारिश में भीगता हुआ, दुनिया से कटा हुआ, एकदम अकेला. पहली पंक्ति है, आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट. मैं रात से परिचित रहा हूं, रात मेरा जाना पहचाना साथी है.
बहुत उदास करने वाली बात है.
है, और परिनी बताते हैं कि इस कविता में फ्रॉस्ट ने इटालियन काव्य रूप तेर्जा रीमा का इस्तेमाल किया है. इसमें तुकबंदी की एक खास चेन होती है.
अच्छा, तेर्जा रीमा दांते ने इस्तेमाल किया था.
हाँ, और परिनी समझाते हैं कि ये सिर्फ एक तकनीकी चीज नहीं है. जब आप इस कविता को याद करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि कैसे ये इंटरलॉकिंग राइम स्कीम,
हाँ,
उस अकेलेपन और उदासी के कभी न खत्म होने वाले गोल गोल घूमने वाले एहसास को और गहरा बनाती है.
जैसे वो उसी चक्र में फंसा हुआ है.
बिल्कुल. ये कविता सीधे फ्रॉस्ट के उस ग्लूम यानी उदास धुंधलके से जुड़ती है जिसका जिक्र उनकी चिट्ठियों और जीवनियों में मिलता है.
परिणी इसी तरह डेजर्ट प्लेसेस और डिजाइन जैसी दूसरी कविताओं का भी विश्लेषण करते हैं.
हाँ, करते हैं, और दिखाते हैं कि कैसे फ्रॉस्ट ब्रह्मांड को लेकर एक अंधेरा नजरिया भी रखते थे, जीवन की अनिश्चितता और मौत जैसे विषयों पर सोचते थे.
तो इन सब कविताओं और परिणी के विश्लेषण से क्या मुख्य बातें, क्या थीम उभर कर आते हैं?
सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो परिणी बार बार कहते हैं वो है कंठस्थ करने की, याद करने की परिवर्तनकारी शक्ति. ये सिर्फ रटना नहीं है.
नहीं, ये रटना नहीं है. परिणी के लिए ये पढ़ने का सबसे गहरा तरीका है ना?
हाँ, सबसे ज्यादा आत्मसात करने वाला. जब कोई कविता आपकी याददाश्त का, आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाती है तो वो कोई बाहरी चीज नहीं रहती,
वो अंदर की आवाज बन जाती है.
बिल्कुल, आपकी सोच आपकी भावनाओं के साथ घुल मिल जाती है, एक अंदरूनी साथी बन जाती है. ये आज के जमाने से कितना अलग है जहां हम जानकारी को सिर्फ सतह पर स्कैन करते हैं.
हाँ, उसे अंदर उतरने ही नहीं देते.
सही कहा.
दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो मुझे लगा वो है फ्रॉस्ट की सादगी में छिपी गहराई.
हाँ, ये कमाल का है. उनकी भाषा आम बोलचाल की लगती है, उनके चित्र जाने पहचाने होते हैं, सड़कें, दीवारें, पेड़,
लेकिन उनके पीछे जीवन और अस्तित्व के बड़े बड़े सवाल छिपे होते हैं. और परिनी हमें दिखाते हैं कि कैसे उन सीधी सादी लगने वाली पंक्तियों की परतें खोली जा सकती हैं.
बिल्कुल, और प्रकृति का रोल भी बहुत अहम है. फ्रॉस्ट के लिए प्रकृति सिर्फ सुंदर बैकग्राउंड नहीं है,
वो एक टीचर है, एक आईना है.
हाँ, कभी वो बर्चेस की तरह सुकून और खूबसूरती देती है, तो कभी स्टॉपिंग बाय वुड्स या डेजर्ट प्लेसेस की तरह अपनी उदासीनता या भयावहता से हमें कंपा देती है. वो जैसे हमारे अंदर के संघर्षों को ही दिखाती है।
और चुनाव, वो जो रास्ते हम चुनते हैं या नहीं चुनते।
हाँ, चुनाव, उनके नतीजे और वो कहानियाँ जो हम अपने जीवन के बारे में खुद को और दूसरों को सुनाते हैं, ये भी एक बड़ा थीम है।
जीवन के वो मोड़, और फिर हम कैसे उन चुनावों को याद करते हैं, उन्हें मतलब देते हैं। द रोड नॉट टेकन तो इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है।
बिल्कुल, कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक नैरेटिव, एक कथा का रूप देते हैं।
और कला का काम क्या है? क्या वो सिर्फ आराम देती है?
परिणी दिखाते हैं कि फ्रॉस्ट की कविताएं दोनों काम करती हैं। वो मुश्किल वक्त में सहारा बनती हैं, सुकून देती हैं,
लेकिन साथ ही वो हमें चुनौती भी देती हैं। हमारी आसान धारणाओं पर सवाल उठाती हैं, हमें मुश्किल सवालों से जूझने पर मजबूर करती हैं।
सही। और इंसान का अकेलापन, बनाम जुड़ाव की जरूरत, ये तनाव भी फ्रॉस्ट की कविताओं में बार बार लौटता है।
हाँ, उनके किरदार अक्सर अकेले होते हैं, पर उनमें समुदाय, कर्तव्य, रिश्तों की खींचतान भी दिखती है, जैसे मेंडिंग वॉल में।
बिल्कुल। और आखिर में कला खुद क्या है? फ्रॉस्ट के लिए, और जैसा परिणी बताते हैं, कविता अपनी बनावट, अपनी लय, अपने अनुशासन के जरिए
जीवन की जो अव्यवस्था है, जो भ्रम है,
हाँ, उसके खिलाफ एक छोटा सा, क्षणिक ही सही, पर एक सार्थक ठहराव है, एक ऑर्डर बनाने की कोशिश।
ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। अच्छा, अगर हम परिणी की लिखने की शैली की बात करें तो वो कैसी है?
वो कमाल की है। उसमें एक स्कॉलर की गहरी समझ है, लेकिन भाषा ऐसी है जैसे कोई बहुत जानकार और जोशीला दोस्त आपसे बातें कर रहा हो।
हाँ, बोझिल नहीं लगती बिल्कुल।
नहीं, वो एक आदर्श टीचर जैसे हैं, धीरज रखते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और धीरे धीरे मतलब की परतें खोलते हैं, और साथ में कविता याद करने के लिए प्रैक्टिकल सलाह भी देते हैं।
ये अच्छी बात है। और फ्रॉस्ट के अपने टूल्स क्या थे, साहित्यिक उपकरण?
परिणी उनके सिंबोलिज्म पर रोशनी डालते हैं, कैसे दीवार, सड़क, जंगल, बर्फ जैसी आम चीजें गहरे मतलब ले लेती हैं। वो फ्रॉस्ट की साउंड ऑफ सेंस, यानी आम इंसानी बातचीत की लय और उतार चढ़ाव को कविता में पकड़ने की जो अद्भुत क्षमता थी, उसे उजागर करते हैं।
हाँ, उनकी कविताएं पढ़ने भी बहुत स्वाभाविक लगती हैं।
बिल्कुल। फ्रॉस्ट आम भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसमें अक्सर एक अस्पष्टता, एक विडंबना होती थी। वो आसान जवाब देने से बचते थे।
तो इस पूरी किताब को पढ़ने का या इस चर्चा को सुनने का क्या भावनात्मक असर होता है?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा असर तो यही है कि हम फ्रॉस्ट को नए सिरे से खोजते हैं। वो जो एक छवि बनी हुई है ना कैलेंडर वाले कवि की,
हाँ,
वो टूटती है और एक ज्यादा गहरे, ज्यादा मानवीय, संघर्ष करते हुए और इसीलिए ज्यादा दिलचस्प कवि और इंसान से मुलाकात होती है।
परिणी की शैली ऐसी है कि पाठक और कवि के बीच एक रिश्ता सा बन जाता है।
हाँ, ये मैंने भी महसूस किया। और शायद सबसे अहम बात, ये किताब हमें याददाश्त और ध्यान की जो ताकत है उसमें फिर से विश्वास दिलाती है। बिल्कुल, ये सोचना ही कितना अच्छा लगता है कि कोई कविता आपकी अपनी हो सकती है, आपकी चेतना का हिस्सा बन सकती है,
जिसे आप टहलते हुए या किसी मुश्किल घड़ी में या खुशी के पल में बिना किसी किताब या फोन के अपने अंदर से ही सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
निश्चित रूप से ये हमें उकसाती है कि हम धीमा हों, ठहरें और सिर्फ सूचनाओं को निगलने के बजाय ज्ञान को आत्मसात करें, उसे अपना बनाएं। परिणी का मूल संदेश शायद यही है, जैसा उन्होंने कहा भी है, कि कविता को कंठस्थ करना केवल याद करना नहीं है, यह उसे आत्मसात करने का कार्य है। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक संरचना का हिस्सा बन जाती है।
वो कविताएं सचमुच आपकी हो जाती हैं।
हाँ,
तो अंत में हम कह सकते हैं कि ये किताब हमें सिखाती है कि कविता के साथ कैसे जिया जाए, उसे केवल पढ़ा या उसका विश्लेषण न किया जाए।
बिल्कुल, ये उस कला को फिर से जिंदा करने का एक बुलावा है जिसे हम शायद भूलते जा रहे हैं।
और परिणी हमें याद दिलाते हैं कि इस भागदौड़ भरी, ध्यान भटकाने वाली दुनिया में गहरे ध्यान का, धीमे चिंतन का और ज्ञान को सचमुच अपना बनाने का मूल्य कितना ज्यादा है।
हाँ, ये हमें धीमा होने और वास्तव में सुनने, महसूस करने के लिए प्रेरित करता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।